Surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. چند باتیں سورت کے بارے میں, اس لیے کہ اس کا مزاج دوسری سورتوں سے مختلف ہے. اس سے پیچھے ہم نے ایک بہت بھاری برکم سورت توبہ پڑھی, جس کے اندر امت مسلمہ کو ڈھیر ساری سے میسج دیے گئے. لیکن سورت یونس جو ہی آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا بہت لائٹ سورت, ہلکی سی سورت ہے, اور مکی سورتوں میں عموماً احکامات نہیں ہوتے. ایمان ثلاثہ, یعنی ایمان کی تھری ڈفرینٹ کائنڈس, توحید, رسالت اور آخرت پر ایمان ہے. سورت یونس کا ٹاپک ایمان بالرسالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ابھی تک ان کا دل ہی نہیں کھل رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایمان بالقرآن کی جھلکیاں دکھیں گی. یہ وہ سورت ہے کہ جس میں 14 times اللہ نے انسانیت کو پکارا ہے, یا ایھا الناس. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ جو کہ خود کو مسلم نہیں کہتے ان سے شیئر کر سکتے ہیں یہ بات کہ دیکھو صرف ایک چیپٹر آف دی قرآن میں 14 times اللہ تعالیٰ نے پوری مینکائنڈ کو بلایا ہے, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے. اس صورت میں لفظ قرآن بھی آئے گا اور کتاب کا بھی بہت دفعہ ہمیں ذکر ملے گا. اور یہاں سے قرآن پاک کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں منزل نمبر 3 شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام پورے قرآن کو ایک ہفتے میں پڑھ لیتے تھے تلاوت کرتے ہوئے. 7 days میں 30 paras کریں گے تو ایک دن میں کتنے پارے بنیں گے آپ نوٹ کیجئے. لیکن ان کا پڑھنا وہ ہمارے والا نہیں تھا, بلکہ ان کو ساتھ سمجھ بھی آ رہا ہوتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا کیسے پڑھتا ہے, ہم تو ایک پارا پڑھ کے تھک جائیں. ہمیں تو آدھا پارا پڑھتے ہیں گلا خشک ہوتا ہے. کسی کا کمنٹ ملا کہ انہوں نے کہا یہاں ہم 3 ghante بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وقت کا, ہم پارا بھی پڑھ لیتے ہیں ترجمہ بھی پتہ چلتا ہے, گھر جا کے ہم صرف تلاوت شروع کرتے ہیں, ابھی آدھا پارا پڑھتے ہیں ہمارا گلا سوکھنے لگتا ہے. تو وہ گلا سوکھتا ہے, کیوں سوکھتا ہے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یاد رکھیے کہ قرآن کی ایک برکت ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن کو عمل میں ڈھالیں گے اتنا ہی زیادہ قرآن اور پڑھا جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی مثال ذہن میں رکھیے کہ گاڑی میں جب گیس ڈالتے ہیں تو گیس کو جب یوز کر لیتے ہیں تو اور گیس لینے کو دل کرتا ہے. اگر پہلی گیس گاڑی میں موجود رہے تو دوبارہ نہ لیتے ہیں نہ آتی ہے, وہ اوور فلو ہونے لگتی ہے. یہ جو نماز اور قرآن ہم پڑھتے ہیں نا, یہ ہمیں ایمان کی گیس دیتے ہیں. جب اس گیس کو ہم نیکیوں میں استعمال کرتے ہیں, یسارعون فی الخیرات یا سابقون الاولون کی صورت میں, تو پھر ہمارے دل کے اندر جگہ بنتی جاتی ہے, پھر ہمیں اور قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمیں اتنی کریونگ تو نہیں ہوتی قرآن کی. صحابہ کا تعلق اتنا خوبصورت تھا, جہاں بیٹھتے جیسے آپس میں آپ اور میں بیٹھ جائیں, جب برادرز کہیں بیٹھے تو کہتے تھے آؤ قرآن پڑھتے ہیں, آؤ شب بتنا الا ربینا, ہمیں ہمارے رب سے ملاقات کرواؤ, ہمیں اللہ کا شوق دلاؤ, ہم قرآن پڑھیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہتے میرے لیے قرآن پڑھیں, کبھی ابو موسیٰ الاشعری سے کہتے. تو اس قرآن کو پڑھنے کی محبت کب آئے گی؟ جب سمجھ آئے گی. ہم ماشاءاللہ سال میں ایک بار پڑھ لیں تو بڑی بات ہے, رمضان میں, یا پھر وہی جو ہماری آمین ہوئی تھی بچپن میں, آج تک اسی آمین پہ لگے. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع بہت دفعہ کرتے ہیں لیکن آخری پاروں تک نہیں پہنچ پاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پارے میں بشرا لفظ بھی بہت آئے گا, یعنی صورت میں ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی دی جائیں گی. قرآن پاک کے مختلف نام بھی آئیں گے. نزول کے اعتبار سے یہ 51 number کی سورہ ہے, یعنی اس سے پہلے 50 surahs نازل ہو چکی تھی. مکی دور کے بالکل آخری دور کی صورت ہے, جب مکہ میں مزاحمت شروع ہو چکی تھی, ریزسٹنس تھی, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب دین کے اوپر لوگ پابندیاں لگائیں, مشکلات میں ڈال دیں, تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. اور نام سورت یونس کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اس قوم یونس کی توبہ کا ذکر ہے, بالکل آخر میں آئے گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے یونس نام ہے تو اس کا ہے کہ حضرت یونس پہ کیسے ہوگا, جیسے ہم بچپن میں لکھتے تھے دس از اے بک, دس از ویری گڈ بک, دس دس دس. تو قرآن کی صورتوں کا ایسا مزاج نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک ٹاپک سمجھیں, بلکہ جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جس میں عمل کی بات ہے. اور باقی قوم یونس کی ایک یونیک بات ہے, یہ واحد قوم ہے دنیا میں کہ جس پر ایک دفعہ عذاب کے اثرات شروع ہو چکے تھے لیکن ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں, بہت پیارے دل کے ساتھ محبت سے پڑھنے کی صورت ہے. اور حقیقت ہے کہ اگر ابھی تک آپ اپنے دل میں قرآن کی محبت ویسے نہیں پا رہے جیسی کہ اکثر باتوں میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت جیسی ہے ویسی, تو انشاءاللہ اس صورت کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ اپنے دلوں میں اس کو محسوس کریں گے. شروع کرتے ہیں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक और छोटी सी बात समझिए कि सूरत यूनुस को एक टाइटल दिया करती हूँ अक्सर मैं, और वो क्या है कि दिल का दरवाजा अंदर से खुलता है। इस सूरत में दिल कुरान के लिए कब खुलेगा, इसका जिक्र कैसे, जब आप अपना दिल खोलेंगे। तो कुरान तो खुला हुआ है, लेकिन हमारा दिल खुला हुआ है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को आज खोल दे, आज का पारा वाकई हमारे दिलों को खोलने का जरिया बन जाए, और हम इस सूरत के साथ साथ अपने आप को इस तरह से रिलेट करें कि मेरा इस कुरान के साथ क्या ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद इन्हीं में से एक आदमी पर वही भेजी कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चुका दे और जो मान ले इनको खुशखबरियां दे दे कि इनके लिए इनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। इस पर मुनकरीन ने कहा, यह शख्स तो खुला जादूगर है। क्या पता चला? गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंकाने वाली ये किताब है। अगर आप इस सूरत में से कुरान की खूबियां नोट करते जाएं तो ये पहली चीज है, ये गफलतों के पर्दों को चाक करती है। और हकीकत है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी गफलतों में गुजर जाती है, लेकिन जब ये किताब खुलती है तो अल्लाह के हुक्म से उस सब पर्दे चाक होते हैं। और दूसरी खूबी इस किताब की, ईमान वालों को, मानने वालों को अल्लाह के पास सच्ची इज्जत की खुशखबरियां सुनवाती है। कदम असद के इंदिरा, कदम असद के सच्चे कदम, कैसे कदम कि जिंदगी में सच आने लगता है। और आप देखेंगे कि कुरान को समझकर पढ़ने से पहले और बाद जो एक बिग चेंज आप देखेंगे ना, आपको झूठी चीजों से चिढ़ हो जाएगी। झूठे कहानियां, झूठे नॉवल, अफसाने, ड्रामे, फिल्में, आप करेंगे छोड़ो, 3 घंटे में क्या जाया करूं इस चीज में पढ़कर। और आहिस्ता आहिस्ता आपके वक्त में बरकत होती जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बरकत बहुत हो जाएगी। फिर फरमाया, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी होकर कायनात का इंतजाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि इसकी इजाजत के बाद सिफारिश करेगा, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम इसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे। मक्का वालों ने कई खुदा बना रखे थे, कई बुत थे उनके, कि जिनको वो अपनी जिंदगी में जगह दिए बैठे थे। अल्लाह सुबहान तला कहता है कि बताओ, क्या तुम इस रब को छोड़कर दूसरों को सिफारशी बनाते हो? देखिए, अगर किसी से कहा जाए कि क्या आपको बादशाह के साथ ताल्लुक अच्छा लगेगा जिसके इख्तियार में यस नो एवरीथिंग है, या आपको बादशाह के किसी दरबारी से दोस्ती करनी है जो बादशाह से सिफारिश कर सकता है, तो आप और मैं सब यही कहेंगे कि हमें बादशाह से दोस्ती करनी है, क्योंकि जब मैं खुद उसकी दोस्ती में आ गई तो फिर तो बात और भी हो जाएगी। जब मैं खुद उसकी दोस्ती में आ जाऊंगा तो बादशाह से बात मनवानी आसान होगी। अब आप अल्लाह के लिए मिसाल तो कोई नहीं है, लेकिन इससे ये खूब समझ चुके होंगे कि जब अल्लाह सुबहान तआला के साथ इंसान का गहरा ताल्लुक हो जाता है फिर उसको किसी दूसरे की परवाह नहीं होती। और यही सबक मुझे और आपको दिन में 17 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में सुनाया गया। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे तेरे साथ ताल्लुक के जो तार टूटे हुए हैं, बीच में जो दूसरे लोग आ गए, तो अपनी रहमत से उनको दुरुस्त जगह पे ले आ। फिर फरमाइसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। सोचो, क्या मुझे यकीन है इस बात का कि मुझे अल्लाह की तरफ पलट के जाना है? देखिए, खबर तो है, मालूम तो हम सबको है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मालूम मेरे अमल पे असरअंदाज हो रहा है? अगर असरअंदाज हो रहा है तो फिर वाकई यकीन है कि जाना है, और ये अल्लाह का पक्का वादा है। ये ना सोचे कि ये कुछ छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये वापसी ही तो रुलाती है। वरना तो जिंदगी में मौज मस्तियां करके इंसान दुनिया से चला जाए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बात को हमेशा सामने रखो, तुमने मेरी तरफ आना है। आम जिंदगी में भी देखिए, जब आपको पता होता है ना अपने कहीं से वापस जाना है, तो आप उस तरह खुल के वहां दिल नहीं लगाते, कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कितने दिन रह गए, कितने और दिन है। और जब आप किसी एक जगह रहते हैं तो फिर आखिर आपका वहां बड़ा अच्छा दिल लग जाता है। जब हम इस दुनिया में रहना सोच लेते हैं ना, तो हमारा यहाँ दिल लग जाता है। अगर मैं और आप अपने आप को इस दुनिया में अपना टेम्परेरी रेजिडेंसी का दौर समझ लें, तो हम सब की नजरें जन्नत की तरफ लगी होंगी। कोई भी शख्स किराए के घर में नहीं रहना पसंद करता, कहते अपने घर जाएंगे, फिर वहां जो भी करेंगे कर सकते हैं, हालांकि कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां भी लिमिटेशन है। लेकिन सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, तो दुनिया में जीने का स्टाइल बदल जाता है। अगर इस बात का यकीन आ जाए कि मैं इस दुनिया में एक वक्ती तौर पर रखी गई हूँ, फिर मैं बेशक पैदाइश की इब्तदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए इनको इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफर का तरीका इख्तियार किया वो खौलता हुआ पानी पिए और दर्दनाक सजा भुगते हैं इस इनकार हक के जुर्म में जो वो करते रहे। दुआ कीजिए अल्लाह में हक का इनकार से बचाए। और हम गर्म पानी नहीं पी सकते, हम तो फ्रिज के ठंडे पानी पीते हैं, कहाँ उबलते हुए खौलते हुए पानी पिलाए जाएंगे। अल्लाह ताला सबको उससे महफूज रखे। वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चांद को चमक दी, चांद के घटने और बढ़ने की मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम इससे बरसों और तारीखों के हिसाब को मालूम कर सको। और अल्लाह ताला ने यह सब कुछ हक के साथ पैदा किया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म रख रहे हैं। नोट कीजिएगा इस पूरी सूरत में लिकौम यालमून, जालमून का लफ्ज बहुत दफा आएगा, क्योंकि जहां कुरान का मौजू होगा वहां इल्म की बात होगी। पता चला कि कुरान इल्म दोस्त है, कुरान इंसान को इल्म लेना सिखाता है। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमान में पैदा की निशानियां इन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवि से बचना चाहते हैं। देखिए यहाँ कद्दरहु मनाजिला की बात है ना, मुशरिकाना कल्चर पे चोट है। हर दौर में मुशरिकाना कल्चर वालों ने सितारों के असरात जिंदगी में महसूस किए। उनका क्या होता है, पैदा होने की तारीख बड़ी अहम है। उस दिन आपका सितारा किस तक आता है, आपके सितारे गर्दिश में, कोई रंग खास आपके लिए, काला रंग बड़ा मनहूस है, सफेद में ये है, सब्ज में ये है, कुछ लोग कहते हैं पत्थर बड़ा मनहूस है, फलां डेट मनहूस है, 13 का हाथ अदद, बहुत सारे कल्चर ऐसे जिसमें मनहूस है। आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह जहां पे 13 नंबर लिफ्ट में नहीं चलता, 13 डालते ही नहीं, कहते ये मनहूस है। और मैं खुद एक ऐसी जगह सफर कर चुकी हूँ, एक एयरपोर्ट पे हम गए तो काउंटर्स लगे होते हैं 1 2 3, तो वहां वो नंबर देख के जाते हैं, तो 12 के बाद डायरेक्ट 14 देखा, मुझे समझ नहीं क्या। बाद में वहां जो वर्कर्स उनसे पूछा, कहते हैं इस मुल्क के लोग 13 का अदद पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीजें अल्लाह करे, ये सूरज चांद सितारे ये इन चीजों पर कोई असर नहीं रखते। आप बताइए जो पैदा ही 13 तारीख को हो गया तो क्या वो मनहूस होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम इस तरह की तोहम परस्ती से बचाता है, इसीलिए अल्लाह ताला बड़े फिर प्यार से कहते हैं इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। यकीन करें इसकी आयतें दिल पे लेने वाली हैं। मैं अगर सिर्फ टोन चेंज करके तर्जमा पढ़ लूं तो आप फौरन उस पर गौर करने लग जाया करें और उसको हाईलाइट कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हकीकत ये है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया ही की जिंदगी पर राजी और मुतमईन हो गए, पूछिए खुद से क्या मेरा जिक्र तो नहीं है, क्या मुझे अल्लाह से मिलने की उम्मीद है, क्या मैं दुनिया ही की जिंदगी पर राजी तो नहीं हो गई, क्या मैं यहां मुतमईन तो नहीं हो गई। और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, क्या मैं अल्लाह की नायतों से गाफिल हूँ। और हकीकत है कि इस किताब को समझे बगैर जब तक पढ़ा, कैफियत कुछ इसी किस्म की महसूस हुई थी कि गफलतों के दिन है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हम सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे जो हम अपने अंदर लेकर आते हैं और अल्लाह को नाराज करते हैं। ठिकाना क्या है, उलाई का मा बाहुमन्ना रुबीमा का अनुयक्सिबून, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना आग है इन बुराइयों के जुर्म में जिनको वो कमाते थे, यानी अपने गलत अकीदों और अपने गलत तर्ज अमल की वजह से जो अमल किए उसकी सजा इनको जहन्नुम में ले जाकर दी जाएगी। इसके बारक्स बड़ी खूबसूरत आयत है, हाईलाइट कीजिएगा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम। और ये भी हकीकत है जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने इन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई है, पूछिए साथ साथ खुद से क्या मैंने इस किताब की सच्चाइयों को दिल से कबूल कर लिया। देखिए ये पहला सफर होता है कुरान में जहां जो आयत आ रही है उसको दिल से कबूल करें। पहले दिन हमने ये बात की थी, जो सुनूंगी उस पे अमल करूंगी, हर वो चीज जो मेरे सामने आएगी मैं उस पे लबैक कहती जाऊंगी। तो फिर खुद से पूछते हैं क्या मैंने इस किताब की सच्चाइयों को कबूल कर लिया और नेक अमल करते रहे, पूछिए क्या मैंने नेक अमल करने शुरू कर दिए। करती तो पहले भी थी, क्या अब कंटिन्यूटी आ गई, पहले भी करती थी लेकिन शिद्दत नहीं थी, अब क्या शिद्दत आ रही, इंटेंसिटी बढ़ा ली। इन्हें इनका रब इनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। क्या क्या बात है, आप कहते हैं कि हम तो किसी और चीज की वजह से सीधे चलते हैं। यहाँ नोट कीजिएगा, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, ईमान है जो आपका मेरा नेविगेटर है। एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी में, बस आप लिख लीजिए ईमान इज योर एक्सीलेटर। जितना एक्सीलेटर दबाएंगे ना उतनी गाड़ी रन करेगी, भागेगी। अंदर ईमान है इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि अंदर की खैर होगी, आप भागेंगे चलेंगे, आपको हर नेकी छोटी लगेगी। और अगर ईमान का लेवल कम है, एक्सीलेटर लूज है या टाइट है, कुछ का टाइट होता है, वो कौन से लोग हैं कि जिनका दिल नहीं करता नेकियां करने को, तो फिर तो कोई नेकी भी नहीं होगी। देखिए ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा हर रोज 17 बार कहे कि एक दिन सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह उसकी ये दुआ कबूल ना करे, आखरत में उसको इसके बदले में खैर ना दे, और दुनिया में अल्लाह ताला उसको इसके बदले में कामयाबी ना दे। तो जितना अकीदा और ईमान दुरुस्त होगा ना उतनी हिदायत ज्यादा होगी। बस लोग कहते बताने वाले ही अच्छा नहीं बताते, इनको बताना ही नहीं आता, नींद आ जाती है, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बताने वाले की वजह से नहीं। लिख लें ये जुमला, आपको यह फायदा होगा, बताने वाले की वजह से नहीं, ईमान की वजह से हिदायत मिलती है। हाँ ये कह लीजिए कि कोई अच्छी बात बताता है तो ईमान वालों को फायदा हो जाता है, वरना बताने वाला सोने जैसी बात करे, प्यार के साथ बात करे, मोहब्बत से करे, वो कहते हैं कि मर्द नादा पे कलाम दिल परे बेअसर, इसके बरक्स कट सकता है फूल की पत्ती से हीरे का जिगर। क्या अल्लाह के नबियों से ज्यादा भी किसी ने खूबसूरत बात की होगी? लेकिन फिर चंद लोग क्यों माने? सिर्फ क्योंकि अंदर ईमान नहीं थी। तो दिल वो दरवाजा है जिसका हैंडल अंदर की तरफ से खुलता है। आपको कोई कितना भी देना चाहे, जब तक आप अंदर से अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, हिदायत नहीं मिलेगी। अच्छा लगेगा आपके कानों को, अच्छा लगेगा किसी की अच्छी बात सुन के, लेकिन हिदायत तब मिलेगी जब आप दिल खोलेंगे। चलिए खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये सारी चीजों से फायदा हो? और अगर होगा, कोशिश है, इरादा है, अल्लाह सुब्हान तआला जरूर आपकी मेरी मदद करेगा, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद करे।